मलाकी अध्याय एक। बाइबल की पुस्तक मलाकी में परमेश्वर मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा पुराने नियम से अंतिम संदेश भेजा, जो उसने यीशु के आगमन से पूर्व इसराइल को दिया था। मलाकी कौन था और वो कहां से आया, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। कुछ लोगों का ये मानना है कि मलाकी नाम काल्पनिक है, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन लोगों में नाम का बहुत बड़ा महत्व होता था। वे नाम का अर्थ जानकर ही बच्चों का नामकरण करते थे। अतः मलाकी का अर्थ है मेरा संदेश वाहक। मलाकी परमेश्वर का अंतिम संदेश वाहक था। उसने अन्य छोटे भविष्यद् वक्ताओं की भांति अपनी पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया है कि वो कहां से आया और उसके पूर्वज कौन थे। वो सीधा सीधा कहता है, मलाकी अध्याय एक पद एक, मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। आपके लिए यही पुस्तक परिचय है। इसमें केवल भविष्यद् वक्ता और श्रोताओं का उल्लेख है, परंतु सच तो ये है कि ये संदेश परमेश्वर की वाणी था। जैसा कि नाम है मलाकी, परमेश्वर का संदेश वाहक था और सुनने वाले इसराइल की प्रजा। परमेश्वर के अंतिम संदेश के प्रथम शब्द पर ध्यान दीजिए, मलाकी अध्याय एक पद दो, मैंने तुमसे प्रेम किया है। कैसा सौभाग्य जब परमेश्वर किसी से कहे, मैंने तुमसे प्रेम किया। यहां ध्यान दीजिए कि ये एक बीती हुई बात नहीं है, ये अतीत की तो है ही, परंतु आज भी जीवंत घटना है। मैंने तुमसे प्रेम किया है और मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर के प्रेम का अंत नहीं होता है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मलाकी अध्याय एक पद दो, यहोवा ये कहता है। परंतु इसराइल का उत्तर देखिए, उनकी आत्मिक अवस्था कैसी ठंडी है। मलाकी अध्याय एक पद दो में आगे लिखा है, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। वे प्रतिक्रिया में जोश का प्रदर्शन करने के स्थान पर उसके प्रेम को चुनौती देते हैं। आज भी अनेक जन परमेश्वर के प्रेम को चुनौती देने के दोषी पाए जाते हैं। कितनी बार सुनने को मिलता है, यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है तो क्यों मेरे जीवन की कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे परमेश्वर के प्रेम को चुनौती देने का कारण बनती है। आज आप इसराइल में देखते हैं कि परमेश्वर के इस वचन का वहां कैसा विरोध होता है। यदि आप वहां किसी से कहे, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, तो उनका एक ही प्रश्न होगा, यदि परमेश्वर यहूदियों से प्रेम रखता तो हिटलर कैसे 60 लाख यहूदियों को मार पाता। हमें ऐसे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद कहा है, हमें ऐसे प्रेम की आवश्यकता नहीं है। परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। हम प्रेम को इतना कमजोर समझते हैं कि उसे दया या तरस में बदल देते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि यदि आप अपनी संतान से इस प्रकार का दयालु प्रेम रखते हैं और उसकी ताड़ना नहीं करते, तो आप सच्चे प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते हैं। आप उसे प्रेम नहीं घृणा करते हैं। अपनी संतान को अनुशासित करने में चूक आपके प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये अपमान और घृणा का चिन्ह है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो हमें अनुशासन सिखाता है। बाइबल में लिखा है, यहोवा जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। प्रेम के प्रति हमारा दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। जब हम प्रायः प्रेम के बारे में सोचते हैं, तब हमारे विचार उस प्रेम की ओर दौड़ते हैं जो सिनेमा में दिखाया जाता है। ऐसी मानसिकता रखने के कारण हम सच्चे और वास्तविक प्रेम के गुणों को नहीं पहचान पाते हैं। ये तो बॉलीवुड का प्रेम है। सच्चा प्रेम इतना बलवंत होता है कि आवश्यकता होने पर भलाई के लिए लड़ने से भी नहीं चूकता है। हमारी सर्वोच्च भलाई के लिए ताड़ना आवश्यक होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि संतान को आजाद छोड़ दिया जाए तो वो माता पिता के लिए निंदा का कारण हो जाती है। हम अपनी संतान से प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए उनकी ताड़ना करते हैं। यदि हमारी संतान सड़कों पर आवारा बच्चों की तरह खेले तो हम उन्हें देखकर खुश क्यों नहीं होते? हम क्यों नहीं कहते, देखो हमारा बच्चा ऐसे कितना प्यारा लगता है? नहीं, हम भाग कर जाते हैं और उसको पकड़कर घर लाते हैं, उसे डांटते हैं, उसकी पिटाई भी कर देते हैं। हम उसे अनुशासन सिखाते हैं, हम उसे सड़क पर खेलने के खतरे बताते हैं और उसे चेतावनी देते हैं। इसके बाद भी यदि वो सड़क पर जाता रहे या जाना चाहे तो हम उसकी पिटाई करते हैं कि वो ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि हमें संतान की सुरक्षा की चिंता है। सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आवारा बच्चा उन्हें पत्थर मार सकता है, इसलिए उनकी ताड़ना करना हम आवश्यक समझते हैं। यही कारण है कि हम ऐसा कठोर कदम उठाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर हमें अपने प्रेम के निमित्त कठोर अनुशासन में रखता है कि हम अपना ही नुकसान ना कर बैठे। होता यह है कि जब परमेश्वर हमें अनुशासन सिखा रहा होता है तब हम प्रायः उससे शिकायत करते और उसके प्रेम को चुनौती देते हैं। यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो आपसे प्रेम रखता है और आने वाली दुर्घटना से आपको सुरक्षित रखने के लिए वो ऐसा कर रहा है। आपको तो उसका आभारी होना चाहिए। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। वे परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? परमेश्वर प्रतिउत्तर में उन्हें एक सच्चाई बताता है कि उसने एसाव से बढ़कर याकूब को चाहा। एसाव और याकूब जुड़वा भाई थे। उनकी प्रथा के अनुसार पैतृक आशीषें एसाव को मिलनी थी क्योंकि वो पहला पुत्र था, जन्म अधिकार उसी का था क्योंकि वही पहले पैदा हुआ था। परंतु परमेश्वर ने कुछ बातें रोकी हुई थी। उसने याकूब को जन्म अधिकार और आशीषें तथा प्रतिज्ञाएं सब कुछ दे दिया क्योंकि इसराइल वंशी याकूब के वंशज थे, ना कि एसाव के। इसलिए यही उनके लिए परमेश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। नबूकदनेस्सर दोनों के ही वंशजों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया था। भविष्यवाणी के अनुसार एसाव के वंशज दासत्व में जाएंगे और फिर कभी ना उठेंगे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एदोम की पुनस्थापन कभी नहीं होगा। एदोमी एसाव के वंशज थे। यद्यपि वे प्रयास करते हैं, उनकी मातृभूमि उजाड़ और निर्जन ही रहेगी। वे कभी भी फिर से उठ नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर याकूब के वंशजों को उठाएगा और इसराइल अपने देश में फिर से वास करेगा। मलाखी अध्याय 1:2-3। क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर। लोग प्रायः परमेश्वर की इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करते हैं कि उसने एसाव को अप्रिय कहा, परंतु यहां अप्रिय का मूल अर्थ है कम प्यार करना, अर्थात परमेश्वर के कहने का तात्पर्य यह है कि उसने याकूब को एसाव से अधिक प्रेम किया। मलाकी अध्याय 1:3-4, उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर कर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यू कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। एदोम वासियों का विनाश निश्चित था, परमेश्वर उन्हें त्याग देगा। यद्यपि उन्होंने पुनर्वास और पुनरुद्धार का भरसक प्रयास किया, वे असफल ही रहे। एदोम वासियों का इतिहास ही समाप्त हो गया। अंतिम एदोम वासी जो था वो राजा हेरोदेस था। उसके बाद वो जाति ही इतिहास से विलोप हो गई। और यहोवा ने कहा, मलाकी अध्याय 1:5, तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इसराइल के सिवाने की परली ओर भी बढ़ता जाए। दुष्ट एदोम की सीमाएं तो निर्जन रहेंगी, परंतु इसराइल की सीमाओं से यहोवा का प्रताप प्रकट होगा। यहोवा यहां तर्क की एक रोचक बात करता है। मलाकी अध्याय 1:6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? परमेश्वर कहता है, ध्यान दो कि पिता की प्रतिष्ठा का कारण उसका पुत्र होता है। व्यवस्था में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। परमेश्वर कहता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? यदि तुम मुझे स्वामी कहते हो तो मेरा कहां क्यों नहीं मानते? मेरा सम्मान क्यों नहीं करते? मेरा भय क्यों नहीं मानते? तब यहोवा याजकों के बारे में कहता है, मलाकी अध्याय 1:6-8, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछते हैं, परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा व तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने कहा, तुम अपने राज्यपाल को कबाड़ उपहार नहीं देते, परंतु मुझे देते हो। ये बड़ी विचित्र बात है कि परमेश्वर को प्रायः अनावश्यक वस्तुओं की भेंट दी जाती है। मैं नहीं जानता कि इस वस्तु के साथ क्या किया जाए। मैं इसे कूड़े में भी नहीं फेंकना चाहता। मैं इसे चर्च में दे दूं तो अच्छा होगा। जब मैं टस्कॉन में पास्टर था तो वहां एक पुरानी सी कुर्सी थी। वो पुरानी ही नहीं, देखने में भी बहुत बुरी लगती थी। एक दिन कलीसिया के सदस्यों के साथ मैं बात कर रहा था कि हम कुछ नया फर्नीचर लाने वाले हैं जिसके कारण हमें ये पुरानी कुर्सी हटानी पड़ेगी। तभी एक सज्जन ने कहा, ओह नहीं नहीं, आप उसे वहां से नहीं हटा सकते। हमने पूछा, क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, वो हमारी कुर्सी है, हमने उसे चर्च में दान किया है। हमने कहा, भाई जब नया फर्नीचर आएगा तो हमें उसे रखने के लिए जगह चाहिए होगी। लोगों की भावनाएं पुरानी वस्तुओं से जुड़ी होती है, जबकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती है और घर में जगह भी नहीं होती कि उन्हें रखें। अब उनके साथ क्या करें? चर्च को दान कर दो, वो वहां पड़ी रहेगी। इस प्रकार चर्च उनके लिए कबाड़ खाना बन जाता है। कुर्सी घर की बैठक में रखी है, नहीं जानते कि उसे कहां फेंके। परमेश्वर को दान में कूड़ा देना। परमेश्वर इन बातों के विरुद्ध अपनी घृणा प्रकट करता है। मुझे दूषित बलिदान चढ़ाए जाते हैं, मुझे बीमार मेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। कलंकित मेड़े, किसी की आंख नहीं है, किसी की हड्डी टूटी है आदि। हमारा तो ये फालतू है, किसी काम नहीं, परमेश्वर को दान दे दे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दो। परमेश्वर ने व्यवस्था में बलि के पशुओं के बारे में विशेष निर्देश दिया है, उन्हें प्रथम फल चढ़ाना है। यदि वे मेमना चढ़ाते हैं तो वो निष्कलंक और निर्दोष हो। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर को बलिदान में चढ़ाया जाने वाला पशु उनके सब पशुओं में सबसे अच्छा होना था। किसी पास्टर के साथ बीती एक घटना मैंने पढ़ी। एक सज्जन थे जिन्हें पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसके पास एक पियानो था जो बहुत पुराना हो गया था, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा आधुनिक पियानो मोल ले लिया। अतः उनके सामने ये समस्या आ गई कि उस पुराने पियानो के साथ वो क्या करे। उन्होंने निर्णय लिया, मैं इसे चर्च में दान कर देता हूं। उन्होंने पास्टर को फोन किया और कहा, मेरे पास एक पियानो है, मैं उसे चर्च को दान करना चाहता हूं। इस बीच परमेश्वर ने उसे बात करना आरंभ की, तुम वो पुराना हिलता डुलता पियानो मुझे दे रहे हो और नया पियानो खुद रखना चाहते हो। परमेश्वर ने उस व्यक्ति की सही खबर ली। अब जब गाड़ी पियानो उठाने आई तो बताइए गाड़ी में कौन सा पियानो चढ़ाया गया? नया पियानो। और पुराना पियानो उसी व्यक्ति के पास रहा। वो परमेश्वर को पुरानी वस्तु देने का साहस नहीं कर पाया था। ये हमारी मानसिकता बन गई है कि अनावश्यक वस्तु परमेश्वर को दान कर दे, जबकि परमेश्वर हमारे जीवन का सबसे अच्छा, निर्दोष, निष्कलंक और प्रथम फल चाहता है। परमेश्वर ने कहा, क्या राज्यपाल प्रसन्न होगा? क्या वो इस बेकार वस्तु की भेंट देने वाले को स्वीकार करेगा? कदापि नहीं। मलाखी अध्याय 1:9। और अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो हम लोगों पर अनुग्रह करे। ये तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब तुम्हारा हाकिम ऐसी भेंट से प्रसन्न नहीं होता है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? तब परमेश्वर कहता है, मलाकी अध्याय 1:10, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पद को व्यवसायिक याजक वृत्ति पेशा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की सेवा नहीं करते, परंतु वे सेवा के बदले में वेतन पाना चाहते हैं, परंतु इब्रानी भाषा में इस पद का अर्थ ऐसा नहीं है। परमेश्वर वास्तव में ये कहता है, मैं तो ये चाहता हूं कि शीघ्र ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाए कि तुम मुझे ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं के बलिदान ना चढ़ा पाओ। चिंता मत करो कि तुम्हें मंदिर जाना है, यदि तुम्हें ऐसे बलिदान चढ़ाना है तो छोड़ो, रहने दो। मैं तो बस चाहता हूं कि कोई मंदिर के द्वार बंद कर दे कि वे मुझे ऐसे बलिदान ना चढ़ाएं। मैं इसके बिना रह सकता हूं। इब्रानी में इस पद का भावार्थ यही है। मलाकी अध्याय 1:10 में आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं, मुझे तुम्हारे कूड़े करकट से प्रसन्नता नहीं होती। मलाकी अध्याय 1:10 के अंतिम भाग में लिखा है, और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर की संतान होने के कारण उसके उपकारों को देखते हुए ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ये हमारे लिए वैसे ही चिंता का कारण होना चाहिए जैसा कि भजन 116 लिखने वाले के लिए था, जब उसने कहा, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। जब मैं परमेश्वर द्वारा मुझे दी गई सब आशीषों और उपकारों के बारे में सोचता हूं, तब एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम परमेश्वर को ऐसी क्या वस्तु दे जिसकी उसे आवश्यकता है? मेरे पास जो कुछ है उसमें से परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, आप जानते हैं। अंत में भजनकार क्या कहता है, उसने कहा, मैं किस योग्य हूं? उसने कहा, मैं तो केवल उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर को क्या दूं, मैं तो केवल वही प्राप्त करूंगा जो वो मुझे देना चाहता है, मैं तो केवल उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु नहीं है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता हो कि मैं उसे दूं। मैंने मेक्सिको में प्रचार के विषय में पढ़ा, वे वहां आदिवासियों में सेवा कर रहे थे। उनकी सभा में एक वृद्ध आदिवासी भी आया था, उसने परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव किया, परमेश्वर ने उसके मन को छू लिया। जब चंदा लेने का समय आया तब उसने चंदा लेने वाले व्यक्ति से कहा, दान पात्र को नीचे करो। उसने दान पात्र नीचे किया और नीचे और नीचे, अंत में उसने उस पात्र को फर्श पर रख दिया। ये वृद्ध व्यक्ति उठा और उस पात्र में खड़ा हो गया और कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, परमेश्वर को इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए, इससे उत्तम कोई वस्तु आप परमेश्वर को दे भी नहीं सकते। यही तो भजन का रचने वाला कह रहा था, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर अर्थात अपना जीवन परमेश्वर को देकर उससे प्रार्थना करूंगा। अब परमेश्वर अन्य जातियों का उदाहरण दे रहा है, क्योंकि इसराइल का याजक वर्ग लगभग भ्रष्ट हो चुका था। मलाकी अध्याय 1:11, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये वो प्रतिज्ञा है जो प्रभु के आने वाले युग की है, जब यीशु संपूर्ण पृथ्वी पर उदयाचल से अस्ताचल तक राज करेगा और प्रत्येक घुटना उसके सामने टिकेगा तथा प्रत्येक जीव उसका अंगीकार करेगी कि परमेश्वर पिता की महिमा के निमित्त मसीह यीशु प्रभु है। तब भजन 2 की प्रतिज्ञा पूरी होगी, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 में वर्णन है कि यीशु सिंहासन पर बैठने वाले के दाएं हाथ से पुस्तक लेता है और उसी समय 24 प्राचीन अपने धूप से भरे सोने के पात्र लेकर आगे आते हैं और सिंहासन के सामने धूप चढ़ाते हैं। लिखा है कि ये धूप पवित्र जनों की प्रार्थना है। धूप चढ़ाना एक प्रतीकात्मक कार्य है। ये मनमोहक धुआं ऊपर जाता है। हम पहले देख चुके हैं कि प्रतीकों का प्रतिस्थापन करने में या उन्हें सच्चाई के स्थान में रख देने में संकट उत्पन्न हो जाता है। आज ये काम धर्म के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा रहा है। आप किसी अनुष्ठान को प्रतीकात्मक रूप में आरंभ करते हैं और शीघ्र ही आप सच्चाई की अपेक्षा उस अनुष्ठान पर अधिक बल देने लगते हैं। आप सच्चाई को भूल जाते हैं और आपका भरोसा पूरा का पूरा उस अनुष्ठान पर स्थिर हो जाता है। पुराने नियम में धूप जलाने का अर्थ पवित्र जनों की प्रार्थना को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना कि परमेश्वर उस मनमोहक सुगंध से प्रसन्न हो। दूसरे शब्दों में पवित्र जनों की प्रार्थना परमेश्वर के मन को प्रसन्न करती है। प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किए गए धूप दान का अर्थ है वे प्रार्थनाएं जो संपूर्ण संसार में परमेश्वर के जन हर भाषा में परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं। अब परमेश्वर अन्य जातियों के बारे में कहता है, वे अपने बलिदान से उसके प्रताप को प्रकट करेंगी। मलाखी अध्याय 1:12। परमेश्वर ने कहा, परंतु तुम लोग उसको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो। अर्थात उन्होंने प्रभु परमेश्वर के नाम को अशुद्ध किया। मलाखी अध्याय 1:12 में आगे लिखा है, ये कहकर कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वो भी तुच्छ है। परमेश्वर में आस्था और उसकी आराधना के प्रति उनका दृष्टिकोण भ्रष्ट हो चुका था। उनके लिए ये एक बोझ था, एक व्यर्थ का परिश्रम था। ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे मनुष्य भी है जो परमेश्वर की सेवा को आभार या बोझ समझकर पूरा करते हैं। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना भी वे एक बोझ समझते हैं। इससे भी अधिक दुख की बात मेरे लिए ये है कि चर्च अपने सदस्यों पर ऐसी चाल चलता है कि वे दबाव से दान देने पर बाध्य हो जाते हैं। आपके पास्टर समिति के 2 या 3 बड़े बड़े लोगों को आपके पास भेज देते हैं कि वे आपके साथ बातें करके आपको मनोवैज्ञानिक रीति से बाध्य करें कि आप इस नए वर्ष में चर्च के लिए अपने अनुदान की वाचा बांधे। अब आप इन प्रभावी मनुष्यों के सामने अपने आप को पैसों से संबंध में नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार उनके सामने आप अपना मान रखने के लिए आपने जो अनुदान सोचा था उससे अधिक दान की वाचा बांध लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की निगाह में इज्जत पाना चाहते हैं। जब नया महीना आरंभ होता है और आपसे कहा जाता है कि आपका चंदा नहीं पहुंचा, तब आप मन ही मन क्रोध करते हुए चेक लिख देते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है पर क्या करूं, मैंने वाचा बांधी। आप कुड़कुड़ाते हुए किसी न किसी प्रकार चंदा देते हैं। ये बड़े दुख की बात है। ऐसे दान से क्या लाभ? उचित तो ये होगा कि आप दान ही ना दें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप दान देते समय कुड़कुड़ाएं। प्रेरित पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9:7, हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यूनानी मूल शब्द जिसका अनुवाद यहां हर्ष किया गया है, उसका वास्तविक अर्थ है उल्लासित, अर्थात दान देकर आनंद मनाने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर आपके दान को नहीं, आपकी मनोवृत्ति को जांचता है। परमेश्वर को जो लोग दान सहर्ष नहीं देते, ऐसे लोग दान ना दे। परमेश्वर कहता है, तुमने सबका सब खराब कर दिया है। क्यों? आपके घृणित स्वभाव के कारण। ओ, मुझे फिर से ये करना पड़ रहा है। मेरा दान मेरे मन में कभी भी घृणा का विचार ना लाए। यदि ऐसा है तो मैं उस काम को ना करूं। परमेश्वर सहर्ष दान देकर उल्लास करने वाले मनुष्य से प्रेम करता है। मलाकी अध्याय 1:13, फिर तुम ये भी कहते हो कि ये कैसा बड़ा उपद्रव है। ओ, हमें आज भी चर्च जाना होगा। नहीं, आज तो टीवी पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, मुझे वो देखना है। परंतु यदि मैं ना जाऊं तो वे मुझे फोन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे फोन करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये भी एक सिरदर्द ही है। ओह, आत्मिकता की कैसी दुखद अवस्था। परमेश्वर की बातें सिरदर्द बन गई है। त्रासदी, त्रासदी। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा खफा रहती है क्योंकि मैं छुट्टियों में भी प्रचार करना नहीं छोड़ता। इस बार हम लोग छुट्टियों में हवाई जा रहे थे, परंतु वहां मुझे प्रचार सभाओं में भाग लेना है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए ये बोझ नहीं है, परंतु मेरी पत्नी वहां मेरे साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहती है। सच तो ये है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस विषय में प्रार्थना करूं। मैं प्रार्थना कर भी रहा हूं। सेवकों की पत्नियां कई बार इस पूरे युद्ध में गुमनाम भूमिका निभाती हैं। हम सेवकों द्वारा किए गए बलिदान और आत्मत्याग की चर्चा करते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि उनकी पत्नियां भी अनेक बलिदान करती हैं। मेरी पत्नी के बलिदानों और मेरे बच्चों के जीवनों में उन बलिदानों का प्रतिफल देखकर मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूं, क्योंकि मैं तो अधिकांश समय बाहर रहता था। मेरे बच्चों को सुरक्षा, प्रेम और पारिवारिक वातावरण तथा परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने का अधिकांश बोझ उसी पर होता था। उसने ऐसा कभी नहीं होने दिया कि जब बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तब उन्हें घर खाली सा लगे। वे जब भी घर लौटकर आए, वो उनके स्वागत के लिए घर में रहती थी। हमारी सेवकाई में उसके बलिदान के कारण आशीष से भरे प्रतिफल जो हमें प्राप्त हुए, उनके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। परंतु यदि परमेश्वर की सेवा आपके लिए बोझ बन जाती है, तो अब समय आ गया कि आप सेवा निवृत्त हो जाएं और कुछ और काम करें, क्योंकि ऐसे में आप भी दूसरों पर बोझ बन जाएंगे। आप कहते रहेंगे, ओह कैसा बोझ है ये। मलाकी अध्याय 1:13-14, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौ सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वो मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए वो शापित है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रण करे और समय आने पर दूषित चढ़ावा चढ़ाकर छल करे वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। मलाकी अध्याय 1:14 का अंतिम भाग, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।